विषय है मंत्र और ईश्वर। आपको संसार में जितने भी लोग नजर आते होंगे एक बात उनके अंदर लगभग कॉमन ही आपको दिखाई पड़ती होगी, मनुष्य कहीं ना कहीं ईश्वर का आसरा जरूर लेता है। जब अपने पुरुषार्थ से उसके काम नहीं बन पाते हैं, मन में निराशा आ जाती है, कोई सहायक भी नजर नहीं आता है, तब वो प्रभु को ही याद करता है कि प्रभु शायद मेरा काम बना। इसीलिए विभिन्न रूपों में चाहे वो स्वार्थवश या परमार्थवश हम प्रभु की उपासना करते ही, कोई हफ्ते में एक बार हनुमान जी के मंदिर में जाता है, कोई हफ्ते में एक बार शिवालय जाता है, सबकी कहीं ना कहीं आस्था जुड़ी होती है और अपने प्रकार से चाहे वो दैनिक चाहे वो साप्ताहिक हम प्रभु की उपासना करते हैं और आशा करते हैं कि मेरी प्रभु की उपासना से मेरे मन का दुख मेरे जीवन का दुख कम हो जाएगा या समाप्त। जो कमी रह जाती है उसके लिए मनोकामना करते हैं कि प्रभु मैं तेरी भक्ति करूंगा, मैं 40 दिन का तप करूंगा या प्रसाद चढ़ाऊंगा, प्रभु मेरा काम बना। तो लगता तो ऐसा है ये स्वार्थ की उपासना स्वार्थ की पूजा है, लेकिन इसके पीछे भी एक राज छिपा हुआ, एक लाभ छिपा हुआ। महर्षि रमण लेकिन अपने शिष्यों के सामने बैठे हुए थे, इसी प्रकार की बातचीत चल रही थी तो महर्षि रमण ने एक बड़ी साधारण सी बात कही। उन्होंने कहा देखो कोई अपनी मनोकामना ईश्वर के द्वारा उसकी प्रार्थना के द्वारा अपनी पूरी करवाता है तो इसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि वो दूसरी ही बात करते हैं। जब वो प्रभु से अपना काम करवाने के लिए प्रार्थना करता है और उसका काम हो जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर जो है उसके चित्त का शोधन होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रभु के प्रति विश्वास बढ़ जाता है कि प्रभु मेरा काम करते हैं और ये विश्वास ही उसको आगे चलकर नई जिज्ञासा उसके अंदर पैदा करता है कि जो प्रभु मेरे सहायक हैं मेरी सुनते हैं मैं उनका दर्शन क्यों ना करूं, वो मुझे दर्शन क्यों ना दे। उसके अंदर इच्छा अगली जागृत होती है कि प्रभु का दर्शन मुझे मिले, उससे मेरा कल्याण होगा, उससे मुझको शांति मिलेगी, नहीं तो मैं संसार में भटकता ही रहूं। इसलिए महर्षि रमण किसी चीज को सत्पुरुष किसी चीज को किसी भी प्रकार की पूजा को मना नहीं करते, पाखंड को मना करते। प्रभु मेरा है अपना है मेरी सुनता है, इसलिए अपने दिल की बात उनसे कर सकता हूं कह सकता हूं, करना ना करना उन पर है, लेकिन मेरे अंदर जो ये भाव रहता है कि प्रभु मेरी सुनते हैं मेरा कल्याण करेंगे तो मैं इस भाव से मैं उनकी उपासना करता हूं उनकी उनसे प्रार्थना करता हूं। तो प्रभु जो अंतर्यामी है मेरे वास्तविक पिता हैं, मेरी वास्तविक माँ, मेरा शारीरिक जीवन उनके बिना चल ही नहीं सकता, चाहे माता पिता मेरी कितनी भी मदद करते हैं लेकिन मेरा शारीरिक जीवन उनके बिना नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे अंदर जो जिसके अंदर जो जान है वो तो वही प्रभु की दी हुई है, प्रभु ही इस देह को चला रहे हैं। इसीलिए वो प्रभु जब मेरे अंदर उनके प्रति श्रद्धा गहरी होती है तब मुझको आगे बढ़ाते हैं। तो फिर वो ये बाहरी उपासना से आंतरिक उपासना पर ले आते हैं, अपनी कृपा द्वारा मेरी बाहरी उपासना से वो मुझको आंतरिक उपासना कर ले आते हैं। इसलिए वो आगे की लीला आगे की रचना रखते हैं ताकि मैं उस प्रभु की खोज इस देह के अंदर ही कर सकूं जहां वो विराजमान है, जिसे कृष्ण गीता में खुद ही कह रहे हैं रत देशे अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं तेरे अंदर निवास करता हूं। तो जहां वो हैं और हर वक्त हैं वहां उनसे भेंट होना सबसे आसान बात, लेकिन हो गए। इसीलिए प्रभु कृपा करके फिर अवतार देते, गुरु रूप में अवतार लेते, मंत्र रूप में अवतार लेते। जब गुरु रूप में अवतार लेते हैं, जैसे कि हमारे सामने अभी का एक लाइव एग्जाम्पल हो महात्मा मोहनदास जी के रूप, उनके जीवन में यह घटना घटी जब मात्र उनकी 13 वर्ष की आयु थी। उस समय वो उनकी समाधि अवस्था हुआ करती थी और रात उनके जंगल में ही गति होती थी। तो एक दिन खुद उन्होंने अनुभव किया, उनके अंदर नाग का आनंद प्रकट था, उसमें वो लीन रहते थे, लेकिन वही नागरूप परमेश्वर ओम ब्रह्म सत्यम इन शब्दों के रूप में, इन अक्षरों के रूप में, इस नाग के रूप में वो अवतार ले रहा। महात्मा मंगतराम जी को जरूरत नहीं थी ना उनके लिए कोई इस बात की इच्छा थी, लेकिन स्वयं ही वही प्रभु अंदर इस मंत्र के अक्षर रूप में अवतार हो रहे ओम ब्रह्म सत्य। फिर दूसरे दिन जब समाधि में बैठे हो, फिर आगे के शब्द आ रहे हैं ऑटोमेटिकली, निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरुष। फिर तीसरे दिन आ रहे हैं सर्व व्यापक कल्याण मूलक परमेश्वर आय। अब बताइए, वो तो उर्दू पढ़े लिखे थे ना, संस्कृत जानते थे, हिंदी बोलचाल की भाषा तो जानते थे, वैसे कोई इसका ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये लगभग संस्कृत शब्द अंदर से आ रहे हैं। क्यों आ रहे और सत्पुरुष के अंदर से क्यों प्रकट हो रहे हैं? ये उनके लिए प्रकट नहीं हो रहे, ये हमारे लिए प्रकट हो रहे। जो हम किसी न किसी रूप में प्रभु की उपासना करते हैं, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि ये मुझे चाहता है, इसलिए मेरा मार्गदर्शन भी तो वही कर रही है। दुनिया वाले मेरा क्या मार्गदर्शन करेंगे, करेंगे तो मेरी समझ में नहीं आएगी, मेरा विश्वास नहीं है। लेकिन गुरु जब मार्गदर्शन करता है उसकी बात पर विश्वास आ जाता है, क्योंकि गुरु 100% निस्वार्थ है। जो पूर्ण गुरु होगा वो 100% निस्वार्थ होगा। निस्वार्थ क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर वासना शून्य होती, वो निर्वास होता है, उसके अंदर लोक कल्याण की भी वासना नहीं होती। लोक कल्याण करना का प्रारब्ध होता है लेकिन वासना नहीं होती। इसीलिए जो वासना की जो बाहरी पद्धति है, जो कुछ भी इस रूप में वासना करते हैं, ये फिर इसका अगला स्टेप शुरू होता है कि अंदर ये उपासना आपके अंदर आ जाती है, फिर वो मंत्र उपासना चालू हो जाती है, प्रभु का मंत्रापन। इसलिए देखो रामकृष्ण परमहंस जो खुद वहां कलकत्ता के अंदर मां का मंदिर था, वहां तो पुजारी थे, वही वो रहा करते थे। तो लोग ऐसा कहते हैं कि वो बाहर की उपासना क्या करते थे, लेकिन उसके बारे में सत्य ये है कि लोगों को तो पता होता नहीं, वो तो बाहर के पुजारी थे। 11 वर्ष की आयु में उनकी समाधि लग जाती थी, उनके अंदर की हालत ये। तो वो गांधी प्रबंध क्या करें, देखो वो कहते हैं पूजा की अपेक्षा जप बड़ा है। सत्पुरुषों की बात ही हमको समझनी चाहिए, उन्हीं की फाइनल ऑथेंटिक बात होती है। वो कहते हैं पूजा की अपेक्षा जप बड़ा है, की अपेक्षा ध्यान बड़ा है। जप के द्वारा जप किसका करोगे? सिद्ध मंत्र का ही करोगे। वो मंत्र जो जैसे गुरु रूप में अवतार लिया, कृष्ण रूप में अवतार लिया, राम रूप में अवतार लिया प्रभु ने और हमको समझाया, उसी रूप से वो मंत्र में भी, मंत्र के रूप में भी अवतार लेते। और अवतार होता कैसे आप ही समझ लीजिए। जैसे कि मान लिया आपके सामने समुद्र है, ठंड पड़ी, समुद्र का पानी जम गया, तो समुद्र में कोई बदलाव हुआ क्या? पानी में कोई बदलाव हुआ क्या? पानी में बदलाव नहीं हुआ, मात्र उसका रूप परिवर्तन हो गया, पानी में परिवर्तन हो गया, क्योंकि पुनः जैसे गर्मी मिलेगी पानी को, बर्फ को फिर पानी बन जाएगा। तो जिस प्रकार पानी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, पानी का जो अवतरण है वो बर्फ के रूप में हो गया, उसी प्रकार ये नाग रूप परमेश्वर जो अंदर रोम रोम में, जिसकी वाणी हम रिपीट कर रहे थे, वो रोम रोम में रमा हुआ है, रोम रोम में प्रेजेंट है, लेकिन मेरे अंगों में नहीं आता। इसीलिए वही मंत्र रूप में अवतार देता है ताकि मैं उसका अंदर संग कर सकूं। इसलिए भगवान कृष्ण नवे अध्याय में कह रहे हैं कि मंत्रो अहम, मैं मंत्र हूं, और मंत्र की उपासना भी बता रहे हैं, यज्ञानां जप यज्ञो अस्मि। यज्ञों में, क्योंकि पहले जो वैदिक परंपरा थी वो यज्ञ की परंपरा थी, उपासना प्रवृत्ति यज्ञ के द्वारा किया करते थे, यज्ञ की आहुति के द्वारा किया करते। इसलिए मनुस्मृति में भी वही बात आती है, गीता में भी वही बात आती है, यज्ञानां जप यज्ञो अस्मि, मैं यज्ञों में सबसे महान जप यज्ञ मैं स्वयं हूं। देखिए ये प्रभु की तो देह है, कितना कर्म कांड करना पड़ता, कितने लोग इकट्ठे करने पड़ते, कितना मेटेरियल चाहिए था यज्ञ करने के लिए, सबसे मुख्य जरूरी अभय कर दिया आपको कि आप सिंपल सा कर्म कर सकते हो कि मौन होकर प्रभु की याद मंत्र के द्वारा अंदर करो, सारे बाहर के झंझट से आपकी मुक्ति। तो ऋषियों की जो बात होती है बड़ी गहरी होती है, और आज के युग में महात्मा मंगलदान जी दक्षिण में महर्षि रमण, ये लगभग लगभग साथ ही साथ दोनों की जो है प्रकाश के आसपास घर थी। तो अब विचार करिए महर्षि रमण क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मंत्र, अब देखिए महर्षि रमण के पास मंत्र, ईश्वर, गुरु, कुंडलिनी, आत्मा, ये सब एक ही है, अर्थात एक के ही अवतरण है या एक के ही ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें कोई अंतर नहीं। चाहे गुरु के प्रति फिजिकली आपको मिल गया है, उसने आपने संग रख लिया, उसके प्रति पूरी तरह समर्पण समर्पित हो जाएगी, वही पार लगा देगा, कैसे लगा था ये वो मालिक है, वो खुद ईश्वर है। इसी प्रकार उस सिद्ध पुरुष का मंत्र मिल गया आपको, उसको आपने उसकी एब्सेंस में जाप शुरू कर दिया, वो प्रेजेंट ही नहीं आपके सामने। आज महात्मा मंगलदान जी कहाँ है, हम तो गुरु रूप में अंदर स्वीकार भी करने हैं, हृदयंगम भी करने हैं, लेकिन मंत्र उपलब्ध है, उसकी वाणी भी उपलब्ध है, त्रियोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दाता, जो सुंदर प्रेम से मंगल पाया पा, उसका अपार कल्याण होगा। अपार कल्याण कहते हैं मोक्ष को, अर्थात भक्ति का जो बोल है मोक्ष, जन्म मरण से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, वो इसको प्राप्त हो। तो इसमें से किसी को भी अपना लो, वो रात खुल जाएगा फिर उप। तो आप बताइए ये जो उपासना है ये कितनी सरल रूप में प्रभु हमको दे रहे हैं मंत्र का। तो बाहर की उपासना का जो अगला रूप है, का एडवांस रूप कही है, वो है मंत्र उपासना जो अंदर। तो मंत्र उपासना के बारे में एक मेथड ही तो है, कैसे भी नहीं कर सकते। तो महाराज जी सप्ताह लास्ट में लिख रहे हैं कि एक वचन में आसान पढ़ रहा हूं ताकि आपको इंडिकेशन दी जाए कि मंत्र उपासना होती कैसे अंदर। वो कहते हैं सम बुद्धि यानी आत्म आनंद को प्राप्त करने की खातिर, सम बुद्धि यानी आत्म आनंद को प्राप्त करने की खातिर प्रथम ईश्वर सिमरण परिपक्व होना चाहिए। अंतर्गत हृदय में नाम का सिमरण जो किया जाता है वह असली सिमरण है। अंतर्गत हृदय अर्थात मन में जो सिमरण किया जाता है वो असली सिमरण है। जवान होंठ बिल्कुल बंद होने चाहिए, ऐसी निर्मल धारणा से मन मिथ्या कल्पना को छोड़कर नाम आधारी हो जाता है और परम विवेक को प्राप्त होता है। तो सिमरन किस वास्ते, श्रीमद विश्वास से है कि मेरे मन के अंदर हर वक्त जो बेचैनी चलती रहती है, ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष चलते ही रहते हैं, चीजों की याद बनी रहती है। आप श्रवण कर लीजिए मौन होकर, संसार याद आता है। ये मन का मेरी आदत बनी है, मन के अंदर संकल्प है, मन के अंदर संसार है, तो इनको मैं कैसे मिटाऊंगा? मैं तो नहीं मिटा सकता, मैं जानता ही बढ़ा सकता हूं, कम नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि मंत्र शक्ति से, क्योंकि मन के अंदर मनन किया जाता है, किसी चीज को बार बार याद करना इसको मनन कहते हैं। मैं भोगों का बार बार मनन करता हूं, किसी से दुश्मनी होगी तो दुश्मनी का बार बार मनन करूं, महीनों मनन करता रहूं, तो उसी प्रकार जब ईश्वर के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता है, राग बढ़ता है, तो मैं उसके मार्ग को अपनाता हूं, और जो वो कह रहा है, जो गुरु के द्वारा कह रहा है, गुरु के रूप में कह रहा है, या शास्त्र के रूप में लिखकर दे रहा है, मैं उस पर ध्यान देता हूं, तब मैं सीखता हूं कि मैंने मौन होकर मन के अंदर मंत्र का मनन करना है। और कैसे मनन करना है? प्रेम पूर्वक। क्यों प्रेम पूर्वक? प्रेम पूर्वक जब आप मन में कोई चीज याद करते हो, वो बड़ी आसानी से याद आती रहती है, और बाकी चीजों को वहां से वो हटा देती है। इसलिए मन का शोधन होता है, मन का शुद्धिकरण होता है, मन का प्योरिफिकेशन होता है। और बताइए कि मन अंदर है, सारे विकार मेरे मन के अंदर है, तो इलाज वहीं तो होगा जहां विकार। इसलिए सत्पुरुषों का जो मार्गदर्शन है वो आपको बाहर की उपासना से अंदर ले जाता है, उसके मुकाबले में ये श्रेष्ठ उपासना है। और इसीलिए देखो मनुस्मृति में आया है, विधि यज्ञात जप यज्ञो विशिष्टो तशिभी गुण है। तो विधि विधान या जो यज्ञ परंपरा थी वैदिक काल में, कहते हैं कि उसके मुकाबले में जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है। मन के ऊपर जो इस मंत्र के मनन का, मंत्र के श्रवण का असर पड़ता है, वो बाहर की उपासना से 10 गुना ज्यादा तगड़ा है, 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। अब देखिए मनुस्मृति वैदिक काल की स्मृति, और गीता देखिए उसके बाद की विद्या की रचना है, इसके बाद उन्होंने गीता में लिखा, वहां भी वो यही कह रहे हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञ, यज्ञों में जप यज्ञ मैं स्वयं हूं, मंत्रों अहम मैं मंत्र हूं, तो जो मेथड है वो भी प्रभु, जो साधन है वो भी प्रभु। तो मेथड भी प्रभु ने दिया, साधन भी प्रभु ने दिया, जिसके लिए तो मैं लोगों की बात मानू या प्रभु की बात मानू, ये तो मैंने सोचना थे, मैंने सोचना है, लोग तो बहकाएंगे मुझको, दुनिया में समझदार लोग ज्ञानी लोग बहुत कम होते हैं, ज्यादातर आपको मिसगाइड ही करने वाले मिलेंगे। लेकिन शास्त्र तो लिखे है ना, या तो शास्त्र का प्रसंग मैं सुनू, जैसे आज सुनने को मिला है, शास्त्र के डायरेक्ट प्योर बात मुझे सुनने को मिल रही, समझने को मिल रही, तो बुद्धिमान आदमी तो एक बार ही समझ जाता है। यदि कोई कथन है, डाउट है, तो ग्रंथ तो अवेलेबल है, बाद में भी पढ़ सकते हैं, वहां से लिखा हुआ देख सकते हैं, वास्तव में प्रमाण की, अरे गीता तो प्रमाण ग्रंथ है। इसीलिए प्रमाण के साथ जब मैं प्रभु की उपासना करता हूं, तब ये अंदर का काम होता है। लेकिन एक बात और बता दूं कि उपासना के मामले में भी बड़ी बड़ी भ्रामक चीजें जो है सामने आती है। जैसे प्रभु की उपासना दो तरह की होती है, अंदर एक को कहते हैं योग मार्ग, या राज योग भी बोलते हैं, योग मार्ग है यार, राजयोग बोलते हैं। उसमें क्या होता है, बड़ा छोटा सा मंत्र होता है, 2 अक्षर का 3 अक्षर का, जब श्वास अंदर जाती है तो आधा जो मंत्र है वो आप के साथ रिपीट करते हो, रिपीट आवाज नहीं आती उसमें, एज्यूम करते हो कि उसकी वो साउंड निकल गई, जब श्वास बाहर जाती है तब बाकी जो आधा है वो अंदर से एज्यूम करते हो कि उसके साथ उसकी साउंड बाहर आए। तो इसको पद्धति को श्वास के अंदर के साथ आधा मंत्र जाप करना, श्वास बाहर के साथ आधा जाप करना, इसको योग मार्ग बोलते हैं या राजयोग प्रगति ही बोलते हैं, ये श्वास के साथ किया। लेकिन हर जगह ये बात लिखी हुई है कि इस पद्धति के लिए मनुष्य को गुरु से डायरेक्ट दीक्षित होना पड़ता है, ये कंडीशन है। जिसको भाग्यवश वो गुरु मिल गया और ये उसकी मर्जी है, फिर भी तो आपको जप योग में लगा सकता है, क्योंकि यदि वो राजयोगी खुद है तो राजयोग में ही आपको लगाएगा। जैसे महाराज जी खुद जब शिष्य को दिशा देते थे तो राजयोग की दिशा दिया करते, लेकिन उन्हीं के द्वारा ये महामंत्र भी कर लो, अच्छी वाणी भी कर लो, और वाणी ये बात कह रही है कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत्व योग मंगत सत अक्षर मित गाइए प्रभु दर्शन होए। देखिए वाणी जिस प्रभु ने मंत्र प्रकट किया है वही लिखकर वाणी भी प्रकट कर रहे, और कैसा क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं, सारे कलह कलेश हमारे मन में ही तो है, तो मन के अंदर जो कलह कलेश है वो प्रभु में एकाग्र होने ही नहीं देते। महामंत्र हम जाप भी करेंगे जो तो देखेंगे कि महामंत्र तो कम याद आ रहा है, दुनिया के संकल्प ज्यादा उसमें याद आ रहा है। तो मंत्र शक्ति से इसीलिए वाणी आता है कि सतगुरु मंदरोई एक मंत्र दीना तिसके तेज से मन दुख छीना। मन का दुख छीन हो जाता है, अर्थात मन की चंचलता धीरे धीरे कम होती रहती है और एक शांत होती है। तो गुरु मंत्र की विशेषता है, मनमाने मंत्र की नहीं, किताबों में लिख पता नहीं कितने मंत्र लिखते हैं, क्योंकि यहां जहां प्रमाण है ये तो आज की बात है ना, ये वाणी तो कोई चैलेंज करी नहीं, कबीर वाणी को कोई किसने चैलेंज किया, नानक वाणी को किसने चैलेंज किया, तो वाणी चैलेंज नहीं किया थी। जो रेवलेशन है जो सत्पुरुषों के अंदर जो प्रकट हुए शास्त्र के रूप में, जैसे वेद के रूप में प्रकट हुए, गीता के रूप में प्रकट हुए, इनको कोई चैलेंज नहीं करता, इनको समझने की कोशिश करते, यदि ठीक जानना है तो इनको पढ़ना ही पड़ता है या किसी से समझना पड़ता है, क्योंकि ये ऑथेंटिक की, तो ये वाणी ऑथेंटिक है। वाणी कह रही है क्या कह रही है कि कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत्व, ज्ञान तत्व कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म आखिरी मंजिल है जिसके बाद कोई यात्रा नहीं करनी होती। तो कलह कलेश ये मंत्र की कृपा से या मंत्र के तेज से ये धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, जितने संस्कार मन के अंदर है वो डायल्यूट हो जाते हैं और धीरे धीरे एक दिन जो है वाशआउट हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, और मेरा मन निर्मल हो जाता है। उस निर्मल मन के अंदर ही वो ब्रह्म प्रकट होता है, मेरे रोम रोम में वो प्रकट होता है, मैं ये जीव बुद्धि इसकी बुद्धि ये उसमें स्थित हो जाती है, और स्थित होती क्या है ये उसमें डिजॉल्व ही हो जाती है, उसमें भूल ही जाती है, फिर खुद ब्रह्म रूप हो जाता है, फिर आत्मरूप। तो कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान प्रतियोग मंगत तत् अक्षर नित गाइए प्रभु दर्शन होए। तत् अक्षर जो उसके हैं, क्योंकि ये ईश्वर रूप है इसलिए इसको तत् कहते हैं, ईश्वर का भी एक नाम तत् है, सृष्टि का तत्व वही है। तो इन तत् अक्षरों का गायन से मतलब है जो इनका जाप करेगा मौन होकर, सो क्या होगा प्रभु दर्शन होए प्रयोग। तो आपको दो बातें आ गई, एक ही दोहे के अंदर एक आ गया कि हमें स्थिति मिल जाएगी, एक जगह लिखा प्रभु दर्शन होगा, अब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए यहां आके शास्त्र का ही सहारा लिया जाता है, मनुष्य की बात काम नहीं करती। देखिए इसी चैप्टर में जो वचन है महाराज जी के वो भी ध्यान से सुनने, इसके बारे में निर्णय भाव से पता लग जाए। वो कहते हैं कि दह निश्चय करके एक नाम में तन मन को लगाना चाहिए, नाम का मतलब जहां भी नाम आता है उसका मतलब होता है मन, दह निश्चय करके एक नाम में तन मन को लगाना चाहिए और अपने कर्तापन का त्याग करना चाहिए, सब कुछ उस ईश्वर को समझकर प्रेम करके सिद्धन करना ही कल्याणकारी है। और देखिए प्रेम करके सिद्धन करना ही कल्याणकारी है, इसका इफेक्ट क्या हो, कहते हैं कि कई जन्म की मैल को थोड़े ही अरसे में पवित्र कर देता है। यह है मनुष्य, यह है मंत्र का तेज, कितने जन्मों के पाप रूप संकल्प, पाप रूप संस्कार आपके मन में इकट्ठे, ये जन्म में भी कितने पाप किए होंगे, कितनी गलतियां की होंगी हमने, उसके भी संस्कार इकट्ठे हैं, मैं कैसे माफ कर सकता हूं? मैं तो जान रही, लेकिन प्रभु मेरे हैं, मेरी उनके प्रति श्रद्धा है, ये मैं जानता हूं। इसलिए प्रभु ही कृपा करके मेरा आगे का रास्ता खोलते हैं और गुरु के द्वारा ये विश्वास दिलवाते हैं कि तू यदि मेरी बात मानेगा तो तेरा अंदर के जो मैल है मन का ये साफ हो जाएगा। जब साफ होगा तो होगा क्या? वो कहते हैं कि कई जन्म की मैल थोड़े ही अर्थ में पवित्र कर देता है। ऐसे सिमरण करने वाले पुरुष अपने अंतर विखे ब्रह्म शब्द को अनुभव करते हैं। ये ब्रह्म शब्द वही है जो महात्मा मंगलदास ने खुद अपने अंदर बचपन से ही अनुभव किया था। गुरुजन के संसार बचपन से ये उनकी स्थिति और 13 वर्ष की आयु में मंत्र उन्हीं के अंदर से प्रकट हो गया, तो वो पात्र थे गुरु बनने के। इसलिए प्रभु ने उनको ड्यूटी लगा दी। महाराज जी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं लोगों को दीक्षा दूं, लोग इकट्ठे करें करूं। एक दिन की बात है, वो जब उसी आयु में एक दिन घर छोड़कर जा रहे, कहते मेरे घर में रहकर क्या करना है, घर में केवल मां थी उनकी, चल दिए बिना बताए। रास्ते में लाहौर पहुंचे, वहां से ट्रेन बदलनी थी उन्होंने, जहां उन्होंने जाने की सोची वहां के लिए एक मूलचंद की सराय में हो रहा था, ठहर गए। रात को ठहर गए तो ध्यान में बैठे होंगे, तो अंदर से प्रभु उनको बोलकर बताए, तुझको जीवों को दुख देने के लिए नहीं भेजा गया, भूले भटके जीवों को अज्ञानी जीवों के मार्गदर्शन के लिए तुझको संसार में भेजा गया है। इसलिए जा, पहले अपनी कमी पूरी कर, ब्रह्म स्थिति प्राप्ति के जो भी कमी रही हो पहले अपनी कमी पूरी कर, बाद में ये तुमने ड्यूटी कर ली। अब बताइए, एक गुरु है उसको भी प्रभु ने ड्यूटी दे रखी है, तो हम लोग के शरीर को कहेंगे महाराज जी तो बड़े इच्छुक थे, बड़े शिष्य बनाने के उनके अंदर संकल्प है, ये कोई निर्वात स्थिति में जो सब कुछ स्थित है उसके अंदर संकल्प कहां तो है, उसके अंदर संकल्प नहीं होता, प्रभु ही उसके अंदर संकल्प डालते। उस गुरु को एक बात का पता होता है, इसीलिए प्रभु ने सारी व्यवस्था की, मंत्र भेजा, ये वाणी भेजी, क्योंकि फिजिकली तो गुरु रहेगा नहीं, तो आप विश्वास कैसे करोगे, क्या वो कहेंगे कि मंत्र क्या है, तो आप ही कहीं से नकली मंत्र, नकली का मतलब जो महाराज जी मंत्र अपने शिष्य को दिया करते थे, किसी शिष्य की बुद्धि यदि कमजोर है तो क्या करेगा, वो वही नाम दूसरों को बता देगा, वो महाराज जी ये देंगे जो भी इसी का जाप कर, जो भी मना शास्त्र में लिखित रूप में मना, जो व्यक्तिगत रूप से किसी गुरु ने किसी को शिष्य को मंत्र दिया है वो कह के जाता है कि किसी भी हालत में तेरी गर्दन भी कर जाए इस मंत्र को बताना मत, क्योंकि तेरा तो नुकसान है उसका फायदा नहीं हो सकती है, इसे तुमको वाणी है, ये सारी चीजें आ रही है, वाणी बोले हो, ग्रंथ कटे तो विचार से कभू ना होवे योग, ग्रंथ कटे तो विचार से, किसी ने बता दिया आपको या ग्रंथ में पढ़ लिया, किताब में पढ़ लिया कहीं पर, कह रहे ग्रंथ कटे तो विचार से कभू ना होवे योग, ये योग मानते नहीं होता, बिन सतगुरु के साधन करे उपजे व्याधि, बल्कि उल्टा ही हो जाएगा, श्वास खा जा पड़ेगा ना, तो श्वास का रोगी खबर ये पता ही नहीं चलेगा मैं गलती कह रहा, तेरा हृदय की शुरू हो जाएगा तुझे पता ही नहीं चलेगा। गुरु पूरी व्यवस्था करके जाता है, वाणी हर तरीके से गाइड करती है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करते, इसे धोखा खाते रहते हैं लोगों से, तो दुनिया वाले भी जानते हैं कि चेला बन जाएगा, मेरी प्रतिष्ठा होगी, मेरी केयर करेगा, मुझको सुख मिलेगा, इसलिए गुरु चेले का विवाह संतान में खूब चलता है। इसीलिए जो सत्पुरुष में है वो सारी बात आपको कह कर जाते हैं और लिखित रूप में छोड़ जाते हैं, यदि हम उसको या किसी विद्वान से या जिस पर विश्वास हो, जो उसकी भाषा हो, खुद भी वो पवित्र हो, परिश्र भक्त हो, उससे सुने समझने की कोशिश करें, सत्य का पता लग जाएगा, विश्वास आ जाएगा। तो उस विश्वास को के अनुसार जब उसका सेवन करोगे तब आपको पता लगेगा ये बात कितनी पवित्र है, कितनी ठीक है कि जो प्रेम से उस मंत्र का या नाम का स्मरण करता है एक थोड़े से अर्थे में उसके मन को वो प्रवेश कर देता है। और उसके बाद होता क्या है, जब वो अगली बात क्या होती है, देखो ये बात हालांकि प्रसन्न करने की है नहीं, लेकिन चूंकि एक रेजिडेंस में आ रही है इसलिए इसका जिक्र करना बहुत जरूरी। तो अगले वचन में कह रहे हैं कि जब अंतर दिखे ब्रह्म शब्द अनुभव होता है, जब इस मंत्र शक्ति से मन का मेरे शोधन हो गया, मन का मन शुद्ध हो गया, तो क्या होगा, अगली अवस्था क्या आएगी मंत्र जपने की, जब अंतर दिखे ब्रह्म शब्द अनुभव होता है और सुरति उसमें एकाग्र होगी। ये सुरति क्या है, मैं बैठा हूं आंख बंद करके, मेरा ध्यान अपने बेटे पे गया कि वो बंबई गया हुआ है, वो काम कर रहा हुआ कहीं पे चोट ना लग गया है, तो ये क्या है, मेरी सुरत जो है बेटे में लगी, ये उस यानी कहते हैं मेरा ध्यान उसमें लगा हुआ है, ये बड़ी सुरत। तो इसी की बात कर रहे हैं, जब अंतर दिखे ब्रह्म शब्द अनुभव होता है और सुरति उसमें एकाग्र होती है, उस हालत को भजन कहते हैं। ये ढोल मंजिले वाला भजन की बात नहीं होती, ये अंदर भजन चल रहा है प्रभुता ऑटोमेटिकली बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, तो कहते हैं कि उस हालत को भजन कहते हैं, यानी निश्चल होकर ईश्वर रस को पान करना और संसारी विषयों से विरक्त। निश्चल होकर ईश्वर रस का पान करना और संसारी विषयों से विरक्त रहे, ये उसके अंदर की नेचुरल स्थिति बनी। हमने सारा संसार उसको खेचा है, सारे भोगला सारा प्रेशर मुझे खेचना है, फिर मन के अंदर विरक्ति आ जाती है, मन प्रभु का रस लेने लगता है, नाम रूप परमेश्वर का, कुंडली रूप परमेश्वर का, जिसकी महर्षि गौड़ भाव कर रहे हैं कि मंत्र ईश्वर गुरु कुंडली आत्मा किसी एक को अपना लो आपका काम हो जाएगा, अर्थात ईश्वर दर्शन हो जाएगा, ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। तो वो प्रभु अंदर या तो नाम रूप में अनुभव होते हैं या कुंडली रूप में अनुभव होते हैं, दोनों ही को ईश्वर कहा जाता है आध्यात्मिक भाषा। और जो ईश्वर की जो फाइनल स्थिति है उसको परमेश्वर कहा जाता है या ब्रह्म का परम ईश्वर, तो वो ईश्वर का प्रारंभिक रूप उसको पहले अनुभव होता है, फिर फाइनल रूप भी अनुभव होता है जो दसवें द्वार में जाकर अनुभव होता है या फिर जहां पूर्ण होती है वहां, फिर मैं जन्म वस्तु से के बंधन से मुक्त हो जाता। तो बताइए एक मंत्र कोई सामग्री नहीं चाहिए, घर में कहीं भी बैठकर यदि नहीं टाइम है ऐसा प्राण प्रबंध दिया कि बहुत बिजी रहता हूं तभी मन के अंदर खराब बनी रह सकती है, मंत्र आपका चलते फिरते भी अंदर चल सकता है। जैसे कि आप घर के काम करते हो बहुत बिजी होते हो, बेटा आपका स्कूल गया है आने का टाइम हो गया तो माँ के मन में तुरंत आ जाएगा, सब काम करते हुए आ जाएगा कि बेटे ने स्कूल से निकलकर मैं यदि नहीं पहुंच पाई उसे सड़क पार कर दी एक्सीडेंट हो गया उसमें चोट लग जाएगी, तो उसके मन के अंदर वो तरंग जल्दी चालू हो जाती है जबकि काम कर रही है अभी भी कर रही है। इसी प्रकार मन के अंदर जब ईश्वर की लगन होगी उसका महत्व होगा, तो संसारी कर्म करते हुए निरंतर मेरे अंदर वो महामंत्र चलता है, उसकी याद बनी रहती है, और प्रभु अंदर से जानते हैं कि मैंने ही इसको प्रारंभिक कर्म करने को दिया, लेकिन उसमें भी मुझको भूला नहीं है, लगन मेरे लिए ही लगी हुई है। इसी रामकृष्ण परमहंस कहते थे घर की नौकरानी जो अपने बच्चे को घर छोड़ा रही है, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे बच्चे को खिला रही है, तो खिलाती तो तुम्हारे बच्चे को है लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा जो अपना बच्चा है वो घर पर है, इसको भी गंदा मुन्ना कहती है, इसको भी प्यार करती है, इसको भी खाना खिलाती है, इसको भी दूध पिलाती है, लेकिन वो जानती है मेरा अपना बच्चा घर पर है। तो बच्चे जैसा प्यार कर रही है लेकिन दिल का कहान अपने, उसी प्रकार संसार में कर्म करता हूं लेकिन दिल मेरा ईश्वर में अंदर ही लगा रहता है, ये है 24 घंटे की आंतरिक उपासना। तो गुरु कृपा करता है, प्रभु कृपा करते हैं, इस प्रकार से मेरा मार्गदर्शन करके मुझको जो है अंदर ले जाते हैं और बाहर की उपासना से, बाहर की झंझटों से मुझे बता देते हैं। क्योंकि बाहर तो दुनिया अज्ञानी भी है, धोखेबाजी भी है, शुद्ध लोग कहाँ मिलेंगे, प्यार लोग कहाँ मिलेंगे। तो भाग्य से जब हमको ये बातें ऑथेंटिक बातें सुनने को मिलती हैं, तब हमारे मन में श्रद्धा जागृत होती है कि मैं क्यों ना एक पूर्ण गुरु की बात मानकर उसके मंत्र जो मेरे दाहिने प्रकट हुआ है उसकी उपासना करूं। इसीलिए ये जो है मंगल तत् अक्षर नित गाइए प्रभु दर्शन हो रहे हो, इसका मतलब ये है कि इन तत् अक्षरों की अर्थात इस सिद्ध मंत्र की जब मैं अंदर मौन होकर उपासना करता हूँ, अर्थात को इसका जप करता हूँ, तो जब मेरा मन एक सर्टेन लेवल तक शुद्ध हो जाता है, उसकी शुद्धता की योग मार्ग में पहचान क्या लिखी हुई है शास्त्रों में कि श्वास की अंतर्गति और बाहर गति है ये विषम होती है, 12 अंदर जाती है 16 बाहर आती है। तो ऑटोमेटिकली आपके मन का जब शोधन होता है तो मन के अंदर चंचलता कम जाती है और प्राण की गति की चंचलता मन पर निर्भर करती है। इसलिए मन जब मेरा शुद्ध होता है तो प्राण भी ऑटोमेटिकली इसकी अंतर्गति बाहर गति ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आप योग मार्ग अपनाते नहीं हो लेकिन मन का प्रभाव श्वास पर पड़ता है और श्वास का आप जब जब पढ़ते तो श्वास का प्रभाव मन पर पड़ता है। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, ये अंदर की क्रिया है। इसीलिए गुरु की बात मानकर जब मौन होकर इस सिद्धांत का जाप करता हूँ, ऐसे ही जाप करता हूँ जैसे कोई अपने मित्र का नाम याद करे, सेवा याद करे, मौन कर सकता है। उसी प्रकार मौन होकर मंत्र के द्वारा प्रभु की याद करता है। फायदा क्या मिलता है कि मन का शोधन होता है, मन भवित होता है और प्रभु का आनंद अंदर प्रकट होता है, शब्द के रूप में, नाद के रूप में या कुंडलनी के रूप में। तभी कह रहे हैं कि निश्चल होकर ईश्वर रस को पान करना और संसारी विषयों से विरक्त होना, यही मेरी क्रिया मुझको ईश्वर तक पहुंचा देती है, ब्रह्म स्थिति दे देती है, मोक्ष प्राप्त होता है। ओम ब्रह्म।